आपने FCCM, FICM, FCCS, फेलोशिप इन डायलिसिस ऐसी कई डिग्रीज आपने कम समय में प्राप्त की है। आपने हमारे मुंबई BSESMG हॉस्पिटल में भी कई साल 3 वर्ष से अपनी सेवाएं प्रदान की है। वर्तमान समय आप ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू जो हॉस्पिटल है वहां पर लास्ट 10 साल से वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप ईश्वरीय ज्ञान और योग की रुचि तथा तीव्र पुरुषार्थ की लगन के आधार से आपने बहुत ही कम समय में यज्ञ में एक प्रेरणीय व्यक्तित्व बनाया है। मधुबन पांडव भवन में जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है जिसमें नित ईश्वरीय ज्ञान और योग के नए नए प्रयोग किए जाते हैं जिसके लाभ से देश विदेश के हजारों भाई बहन के पुरुषार्थ में तीव्रता आती जा रही है। परमात्मा प्रेम की अभिव्यक्ति जब शब्दों के द्वारा निकलती है तो वह कविता बन जाती है। इस प्रकार आप बाहर लाते हैं, आपको प्रभु से असीम प्रेम है जिसकी अभिव्यक्ति आपने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। जी हाँ, आपको कविताएं लिखने का बहुत ही शौक है। आपने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कई कविताएं लिखी है। ऐसी ऊर्जावान त्याग एवं तपस्या को जीवन का आधार बनाने वाले अब डबल डॉक्टर सिद्ध हस्त वैराग्य को जीने वाले आदरणीय सचिन भाई जी के अद्भुत अनुभव एवं अलौकिक जीवन से युवा जगत में उमंग उत्साह की संजीवनी का संचार तो होता ही है, परंतु समस्त ब्राह्मण आत्माओं में भी पुरुषार्थ का प्रवाह तीव्र होता है। इनका प्रोफेशन ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड। जब भी कोई बीमारी आती है, कुछ होता है, तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो डॉक्टर की शरण ले ही लेता है। तो ऐसी महान विभूति आत्मा इस मंच पर विराजमान है। आज वो अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आज का इनका टॉपिक है खुशी का दिव्य तराना। आदरणीय सचिन भाई जी।
ओम शांति। क्लास की शुरुआत एक योग के प्रयोग से करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ शिथिल, संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। वायुमंडल में संपूर्ण मौन, मन स्थिर, बुद्धि एकाग्र, भ्रुकुटी तप पर विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। शरीर की और मन की सारी हलचल समाप्त। कोई आवाज नहीं, मैं एक दिव्य ज्योति हूं। अनुभव करेंगे चेतना की वह दिव्य तरंग मैं हूं। देह और देह की दुनिया संसार और संसार की बातें सबसे न्यारी मैं एक प्रकाश पुंज हूं। दिव्यता मेरा स्वभाव, मन संपूर्ण शांत, निज स्वरूप की अनुभूति, मैं एक तेजस्वी आत्मा। सुख स्वरूप जन जन की थकान मिट गई जब स्वयं को जाना, स्वयं के संपूर्ण स्वरूप का अनुभव, आवास से परे, आवास की दुनिया से परे मैं संपूर्ण शांत स्वरूप, प्रेममयी, एक दिव्य ज्योति हूं। मुझ आत्मा से संपूर्ण वायुमंडल में सुख की किरणें फैल रही है, खुशी का संगीत वायुमंडल में है, संपूर्ण वातावरण नव्यक्त, खुशी की तरंगे चहुओर आनंद का वह दिव्य नाथ आत्मा, सृष्टि का वह संगीत सुन रही है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। इस दिव्य अलौकिक वातावरण में मैं आत्मा तृप्त हो रही हूं। जन जन की प्यास बुझ रही है। वायुमंडल का यह पवित्र दिव्य प्रभाव मैं स्वयं में इस दिव्यता को, इस पवित्रता को भर रही हूं और इसी संकल्प के साथ जीवन को एक नया मोड़, जीवन सरिता को एक नया प्रवाह आज इस अलौकिक पुनीत वातावरण में मैं देने का संकल्प करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले एक राज्य में किसी एक राजा ने अपनी एक पात्र बेटी को एक बहुत सुंदर हीरो का हार कभी दिया और वह हार इतना सुंदर था कि वो जो कन्या थी, वो जो बेटी थी, उसको वो बहुत पसंद आ गया। इतना पसंद कि दिन रात वो उसी हार को देखती रहती, निहारती रहती। परंतु एक दिन अचानक राजमहल से वो हार गुम हो गया और वो राजकुमारी बहुत ही दुखी हो गई, उदास हो गई। सब और ढूंढा गया परंतु वो हार कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा, शायद कोई पक्षी उस हार को उठा ले गया। राजा ने घोषणा की कि जो भी उस हार को वापस दिला देगा उसको बहुत बड़ा पारितोषिक मिलेगा। परंतु कई दिनों तक वो हार नहीं मिला और एक दिन एक युवक जिसने ये घोषणा सुन रखी थी किसी मार्ग से जा रहा था और उसने देखा कि एक तालाब है और वो तालाब बहुत गंदा है, परंतु उसमें एक वस्तु चमक रही है और उसे लगा कि यही वो हार तो नहीं, और यदि यह हार मुझे मिल जाए और मैं राजा को दे दूं तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और इसी लक्ष्य से वो बहुत खुश हो गया और उसने उस पानी में हाथ डाला, परंतु जैसे ही हाथ डाला उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। उसे लगा शायद थोड़ा अंदर होगा क्योंकि अभी भी वो चमक रहा है, तो वो और गहराई में हाथ डालता है, पूरे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। परंतु लगाओ वो लोभ बहुत अधिक है, फिर से हाथ डालता है, फिर से हाथ में कुछ नहीं आता है, छानता है सब जगह, कुछ भी नहीं मिलता है। फिर से बाहर आता है, देखता है हार तो अभी भी वही चमक रहा है और यही वो हार है। और फिर क्या, कूद पड़ता है उस गंदे और गंदले तालाब में, हाथ पटकता है परंतु कुछ नहीं मिलता। हैरान अवाक सोचता है यह है क्या, क्योंकि हार तो अब भी चमक रहा है। और थोड़ी देर के बाद एक साधु वहां से आता है। साधु कहता है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? युवक को लगता है ऐसी बातें दूसरों को बताई नहीं जाती है। साधु है परंतु साधु का भी क्या भरोसा आजकल, बता दू और कहे मैं ही मुझे ही चाहिए। तो साधु कहता है, वो कहता है कुछ नहीं, साधु कहता है बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो युवक कहता है देखो राजा की बेटी का हार खो गया है और सामने वो हार पड़ा हुआ है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार हाथ से निकालने की कोशिश की परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? साधु कहता है हाँ, क्योंकि हार नीचे नहीं, हार ऊपर पेड़ पर लटक रहा है, जो नीचे है वो प्रतिबिंब है, जो नीचे दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन मात्र है, वो हार प्रतीक है मनुष्य के जीवन के सुख का, मनुष्य के जीवन के खुशी का, हैप्पीनेस का, आनंद का, ब्लिस का, वो है कहीं और जिसे हम पकड़ रहे हैं वो कुछ और है। सारा जीवन जिसके लिए लगा रहे हैं वो वास्तविक सुख खुशी आनंद नहीं परंतु एक प्रतिबिंब मात्र है। तो क्या हम करें कि जीवन में वो सुख फिर लौट आए? जीवन की ये दौड़ धूप, जीवन की ये आपाधापी जहां सभी भाग रहे हैं, किसी से भी पूछो क्यों भाग रहे हो, उसे खुद पता नहीं वो क्यों भाग रहा है, बचपन से लेकर अब तक केवल दौड़े जा रहा है, भागता जा रहा है। जीवन के इस अनंत प्रवाह में चेतना कहीं खो गई है, जिसे हम सुख समझ रहे हैं, जिसे हम खुशी समझ रहे हैं, क्षणभंगुर अल्पकालीन और मिलते ही व्यर्थ हो जाती है, फिर कुछ और चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो रहा है जिसके लिए हम इतने बेचैन हैं, चाहते हैं कुछ मिल जाए पर वो मिलते ही व्यर्थ होता है और फिर कुछ और चाहिए और सुख हमेशा दूर भागता है। तो क्या हम करें जो सुख को पाले? आज हम चर्चा करेंगे क्या खुशी का वो संगीत हम सुन सकते हैं, क्या खुशी का वो दिव्य नाद हमारे जीवन की शोभा बन सकता है, क्या वो डिवाइन मेलोडी, क्या वो मधुर संगीत हमारे जीवन में समा सकता है जिससे जीवन वो ना रहे जैसा अब है, ये जो एंग्विश, ये जो आपाधापी, ये जो भाग दौड़ हो रही है, कहीं मैं खो तो नहीं गया इस दौड़ में? क्या करने निकल पड़ा था और क्या पाया? पश्चिम जगत के एक लेखक एजी वेल्स ने एक कहानी लिखी है, एक युवक निकल पड़ता है समुद्र यात्रा में, सोचता है कि मुझे उस दूर देश में जाना है, किताबों में बहुत सारी बातें लिखी है पढ़ी है, सोचता है मैं भी जाऊं, सब कुछ बेच बाज कर यात्रा पर निकल जाता है, 3 मास तक यात्रा करता है, केवल समुन्दर ही समुन्दर, कोई किनारा नहीं, सोचता है पता नहीं कब आएगा साहिल, और एक दिन खुश होता है जब देखता है कि किनारा दिखाई दे रहा है, बहुत आनंदित हो जाता है और उस किनारे पर उसकी नाव उतरती है, सोचता है यहाँ नए लोग होंगे, नई भाषा होगी, नया सब कुछ हो गया, नया नई संस्कृति होगी जो किताब में पढ़ा था, परंतु देखता है यहाँ तो लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो मेरी भाषा है, थोड़ा सा और अंदर जाता है तो पाता है यह तो वही जगह है जहां से मैं निकला था, यह तो मेरा ही गांव है। ये जो दौड़ थी सारी, जो सब कुछ कर वहीं पहुंचे जहां पर पहले थे, हाथ खाली ही रह गए। एक वैज्ञानिक ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स साइंस एंड टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स. सारा जीवन खोज में लगा दिया और जीवन के इस अंतकाल में, इस शाम में ऐसा लगता है जैसे जीवन खो गया, जैसे जीवन में जो करना था, जो पाना था, जिसकी चाह थी वो हुआ ही नहीं और कुछ और ही करता रहा और जीवन खाली खाली रिक्तता है जीवन में, एक ऐसा स्पिरिचुअल वैक्यूम. कहीं वो मैं तो नहीं, और यदि वो मैं है तो नियति ने, सृष्टि ने, भगवान ने, प्रकृति ने, भाग्य ने एक अवसर आप सभी को दिया है इस स्थान पर आने का. क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हो ये साधारण स्थान नहीं, जिस जगह आप बैठे हैं तीर्थों का ये तीर्थ है, परमात्मा अवतरण भूमि है, इस स्थान से ज्यादा पवित्र शायद इस संसार में कोई स्थान होगा. यहाँ के जो प्रकंपन है, यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ की जो पवित्रता है, यहाँ का जो ब्रह्मचर्य का प्रवाह है, समुद्र है पवित्रता का, विशुद्ध संस्कृति का यह द्वीप है. और यदि कोई यहाँ आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि यहां के प्रकंपन से वो अप्रभावित रहे. यहां जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया है परमात्मा कार्य में, उनके प्रकंपन यहां है. संपूर्ण जीवन को जिन्होंने समर्पण कर दिया, ऐसी दिव्य और तेजस्वी आत्माओं का यह स्थान है. और इस स्थान में अलौकिक वाइब्रेशंस है, समुद्र है ये पॉजिटिविटी का. जो आएगा इस स्थान पर रंग में रंगेगा. इसलिए जब ऐसा एक अवसर भाग्य ने दिया है और हम इस स्थान पर पहुंचे हैं, हम हमेशा कहते हैं जो भी मिलता है आपको इस स्थान पर किसने लाया? क्या किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी व्यक्ति ने, किसी मनुष्य ने? नहीं. जब जन्म जन्म के पुण्य कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, उन पुण्य कर्मों ने ढकेल ढकेल कर आत्मा को इस स्थान पर पहुंचाया है. ऐसा ये दिव्य स्थान, ऐसा ये पवित्र स्थान जहां प्रभु प्रेम के वातावरण में प्रकंपन है, केवल आत्मा रिसेप्टिव हो जाए, रुक जाए, स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, मन बुद्धि को शांत कर दे, तो यहां से जो प्रकंपन आत्मा में भरेंगे वो आत्मा की सच्ची कमाई होगी. और वो जो स्पिरिचुअल वैक्यूम है, वो जो रिक्तता है, वो भरेगी. और एक नई जर्नी, एक नया प्रवाह, एक नई यात्रा यहां से चालू होगी. उस नई यात्रा का ये उगम स्थान है, पवित्रता की यह गंगोत्री है. तो द डिवाइन मेलोडी, वो खुशी का मधुर संगीत हम कैसे सुने, कैसे जीवन में लाए? क्यों ये जीवन में दुख है, अशांति है, संताप है, एंग्विश है, मेंटल एंड फिजिकल टर्मोइल है? जीवन की नैया इस अनंत सागर में कहीं खो तो नहीं गई? और यदि खो गई है तो आज उसे स्थिर करना है. संगीत के साथ सुर है, सा रे ग म प ध नी. तो आज हम ऐसी सात बातों की चर्चा करेंगे. संगीत के ये सात सुर, ऐसी सात बातें, वो सात सुरों का सरगम अपने जीवन में समा लेना है, धारण कर लेना है. यहां आना सार्थक हो जाएगा यदि ये सातों ही सुर हम अपने जीवन में समा ले तो. सबसे पहले शुरुआत करते हैं सा से, सा अर्थात साधुवाद। हिंदी का शब्द है साधुवाद, अर्थात धन्यवाद, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। इसमें तीन बातें हैं। ग्रैटिट्यूड ये शब्द पॉजिटिव शब्द है, थैंकफुलनेस तो शब्द है पॉजिटिव शब्द है, साधुवाद या धन्यवाद का भाव। जब तक यह धन्यवाद का भाव जीवन में नहीं, तब तक खुशी का वह गीत, वह संगीत नहीं सुन सकते। पॉजिटिव ऊर्जा है धन्यवाद में, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे एक बार, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे, और जीवन में उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ किया, उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद करेंगे जो हमारे जीवन में हमारे मददगार बने, हमारी सहायता की, हमसे प्रेम किया, हमें सहयोग दिया, हमारी पालना कर रहे, उनको भी धन्यवाद करेंगे जो हमारे जीवन में विघ्न बने, क्योंकि अगर वो ना आते तो हम इतने शक्तिशाली भी ना बनते, इतने अनुभवी भी नहीं बनते। तो सबसे पहला धन्यवाद उन आत्माओं को, उन व्यक्तियों को जो हमारे जीवन में है, जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है, हमारे राष्ट्र में है, इस संसार में है। दूसरा, प्रकृति को धन्यवाद। इस प्रकृति ने हमारी कितनी पालना की है और हमने इसके साथ क्या किया है, कैसा खिलवाड़ किया है, कैसा अत्याचार किया है। रुष्ट है प्रकृति हमसे। तीसरा, उस परमात्मा को जिसकी छत्र छाया निरंतर चल रही है हमारे ऊपर पर हमें पता नहीं। तो सभी अलर्ट होके स्थिर होके बैठेंगे, रेड लाइट। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं अहोभाव से भरपूर, धन्यवाद से भरपूर, दिव्य संगीत से भरपूर दिव्य आत्मा हूं, देख रही हूं मेरी आंखों के सामने वो सभी व्यक्ति मेरी मां, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मित्र, संबंधी, साथी, बॉस, मालिक, कितना ना मैं आप सबका धन्यवाद करूं। यदि आप ना होते तो मैं ना होता। जो प्रेम की सरिता आपने बहाई उनके लिए मैं आज दिल से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आई थैंक यू ऑल to make this life blissful. मैं उन व्यक्तियों को देख रहा हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया, अपमान किया, पीड़ा पहुंचाई, षड्यंत्र किए। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। जीवन क्या है यह आपने ही मुझे सिखाया, सबको धन्यवाद। मन गदगद हो रहा है, चेतना स्थिर हो रही है। देख रहा हूं ये पांच तत्व प्रकृति के, हे मां तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कब से तू मेरी पालना कर रही है और मैंने क्या दिया तुझे, आज से प्रण करता हूं तुझे प्रदूषित नहीं करूंगा। दिल से शुक्राना। एंड आई सी द इनविजिबल पावर दैट वॉज एवर विथ मी, द सुप्रीम गॉड। हे प्रभु, जो कुछ भी तूने जीवन में दिया उन सब के लिए तेरा दिल से धन्यवाद। ना कोई शिकवा, ना कोई कंप्लेंट, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, तुम्हारा हूं और तेरी छत्र छाया निरंतर मुझ पर रही। दिल से तेरा शुक्रिया। कैसा हल्कापन महसूस हो रहा है, कैसी सकारात्मक ऊर्जा आत्मा में प्रवेश कर रही है। सारा नकार विलीन हो गया, एक यूनिवर्सल लव, एक सार्वभौमिक प्रेम हृदय में। एंड नाउ आई हियर द डिवाइन मेलोडी ऑफ हैप्पीनेस, the unprecedented joy, the eternal rapture, the ecstatic bliss, deep silence, om shanti। सबसे पहली बात, जीवन में साधुवाद, धन्यवाद, अहोभाव, थैंकफुलनेस, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरा है रे, सा रे। रे अर्थात अंग्रेजी में किरण कहा जाता है रे को, सूरज की एक किरण। इसमें फिर तीन बातें, आशा की किरण, पॉजिटिविटी की किरण, प्रेम की किरण। इन तीन किरणों को जीवन में प्रवेश करने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु वो आशावाद नहीं छोड़ना है। चाहे जीवन कितना ही संघर्षमय क्यों ना हो परंतु आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, डू नॉट ब्रिंग मी गुड न्यूज, गुड न्यूज वीकन्स मी, ब्रिंग मी बैड न्यूज बिकॉज आई सी अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम। आशा छोड़नी नहीं है। इतिहास साक्षी है, 1914 थॉमस एल्वा एडिसन, शाम का 4 बजे का समय था, न्यू जर्सी में उसकी जितनी बिल्डिंग थी, जितनी रिसर्च लैब थी, 10 बिल्डिंग सबको आग लग गई। चहुओ और कोहराम मच गया, अब क्या होगा, इतना सारा रिसर्च वर्क, इतना लाखों करोड़ों की वो संपत्ति सब जल रहा है, और एडिसन चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है। उसका बेटा भाग के आता है, कहता है, पिताजी ये क्या हो रहा है। वो कहता है, जाओ अपनी मां को बुलाओ, ऐसा दृश्य वो बाद में नहीं देख पाएगी। और वो एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहता है, ऑल द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन अवर रिसर्च सी हाउ दे आर बर्निंग, सारी हमारी मिस्टेक्स जलकर भस्म हो रही है. दिस वॉज द एटीट्यूड उसका बेटा चार्ल्स एडिसन 1961 के रीडर्स डाइजेस्ट में अपना अनुभव लिखा कि व्हेन माय फादर सेड दैट आई वाज शॉक्ड. और विद इन सिक्स मंथ्स जो कुछ खत्म हो गया था फिर से खड़ा कर दिया. यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो दुखी होता, इतना लॉस हो गया बिजनेस में, इतना ये सारे पैसे चले गए, अब क्या हो गया, देवाला निकल गया, परंतु हार नहीं मानी. विद इन सिक्स मंथ्स सब कुछ फिर से खड़ा करके रख दिया. ऐसी दृढ़ता, ऐसी आशा की किरण जीवन में हो, नन ऑफ द थिंग्स ऑफ लाइफ कैन मेक अस होपलेस. आशा छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. पॉजिटिविटी की किरण, चाहे कितना भी नकारात्मक वायुमंडल हो, आपने नाम सुना होगा अर्देशीर गोदरेज. गोदरेज का लॉक, जब ये व्यक्ति पहली बार मुंबई में आया उसके पास कुछ भी नहीं था, कंगाल था. अखबार में एक दिन पढ़ा कि मुंबई में चोरियां बहुत हो रही है और लॉक मजबूत नहीं है. उसने सोचा क्यों ना मैं लॉक बनाऊं, और उसने नए लॉक बनाने की कोशिश की. लोग हंसे कि अरे तुम क्या करते हो, तुम क्या नया कर लोगे, दुनिया में सब लोग ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं, तुम तो वकील हो, तुम्हारे पास क्या अनुभव. उसने कहा नहीं, मुझे यही बिजनेस करना है, और उसी लॉक की बिजनेस पे उसने चालू किया. और धीरे 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 गोदरेज एक ब्रांड बन गया. एक पॉजिटिविटी, एक परिस्थितियां सब कुछ विरोधी थी, पर रुका नहीं, जो करना था उसने किया, क्योंकि शुद्ध संकल्प था. व्हेन द इंटेंशन इज प्योर, when the intention is pure, when the desire is selfless to help the humanity, sari kainat shadyantra karegi tumhari madad karne ke liye, the whole universe will conspire to make your dream come true. hame keval sankalp karna hai, wo sankalp shuddh ho, shreshth ho, mahan ho, nisvarth ho, shubh ho. when the intention is pure, जो हम चाहते हैं, वॉट एवर दैट वी डिजायर इन अवर हार्ट, दैट विल मेटीरियलाइज. और तब खुशी की वो किरण जीवन में प्रवेश करेगी, खुशी का वो संगीत, वो डिवाइन मेलोडी हम सुन पाएंगे. तो आशा नहीं छोड़नी है, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है. उन लोगों के साथ एसोसिएट रहो कि जो पॉजिटिव है, उन लोगों से दूर रहना है जो हमारे मन में नेगेटिविटी भरते हैं. उनका संग हमें नीचे गिराएगा. और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है एक परमात्मा का संग, और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है उन लोगों का संग जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं. तीसरा बताया प्रेम, प्रेम की किरण, द रे ऑफ लव. लिस्ली वेदरहुड नाम की एक विदेशी महिला है, उसने लिखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, एक सैनिक, एक अफसर आया नहीं अभी तक कैंप में. उसका मित्र कहने लगा मैं उसे जाकर देखूंगा, अब तक आया क्यों नहीं मेरा साथी. ऑफिसर ने कहा तुम मत जाओ, वहां पर बहुत जबरदस्त गोलाबारी हो रही है, बच के नहीं आओगे, शायद तुम्हारा दोस्त तो मर भी गया होगा, इतना जबरदस्त युद्ध चल रहा है. वो कहता नहीं मुझे जाना है, बहुत समझाया जाता है, वो नहीं मानता और जाता है. और जाता है तो देखता है उसका दोस्त बस मरने को है, और उसको बचाते बचाते उसको भी कितनी गोलियां लग जाती है सीने में, और उसकी डेड बॉडी को पकड़कर बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ वो वापस कैंप में आता है. उसका ऑफिसर कहता है देखो मैंने बोला था ना तुमको मत जाना, खुद भी मर गए ना. तो वो कहता है नहीं, मेरा जाना व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे इस मित्र ने कहा जिम आई नो यू विल कम. क्या कहा उसने कि मुझे पता था तुम आओगे. यही प्राप्ति है, यही उपलब्धि है जीवन की. अब मैं मर गया तो क्या, द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ लव इज टू ले डाउन वन्स लाइफ फॉर द बिलव्ड. उस प्रेम की किरण को जीवन से कम न करना। तो सारे उसके बाद में ग, ग अर्थात गमन, उसमें फिर तीन बातें, गमन अर्थात ट्रैवल। एक ट्रैवल है बाह्य, एक विदेशी लेखक ने लिखा है कि मैं सारी दुनिया का मैंने चक्कर लगाया और आज मुझे समझ में आता है ये चक्कर मैंने क्यों लगाया, ये जानने के लिए कि मेरा जो गांव है कितना महत्वपूर्ण है। बस यही उसकी उपयोगिता थी, तब मुझे अपने गांव का महत्व नहीं था। आज सारी दुनिया का चक्कर लगाकर मुझे समझ में आया कि जो शांति यहाँ है, जो प्रेम यहाँ है, जो संगीत यहाँ गाँव में है, वो और कहीं नहीं है। तो ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है जिससे हैप्पीनेस के लिए कहा जाता है, दैट इज द डिवाइन मेलोडी। परंतु हम उस ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहे कि दुनिया का चक्कर लगाओ, हम एक सूक्ष्म ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। उसमें तीन भाग, पहला वॉकिंग, रोज सुबह सुबह प्रकृति के सानिध्य में जाना, प्रकृति का संगीत सुनना, चिड़ियों की चहचहाट सुनना, वो ट्रैवल, वो गमन। हम हमेशा एक बात बताते हैं, एक लेखक ने लिखा है मेरे पिताजी के साथ मेरा बहुत झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि सुबह होते होते मैंने कहा कि एक तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगा इस घर में, और मैं घर छोड़कर निकल गया। पैसे तो थे नहीं, बाद में पता चला घर से जाने के बाद, और चलते 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 वॉकिंग करते 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 पता चला कि गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में उसने ये लिखा, प्रकृति के सानिध्य में जाना, वॉक, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू बी विथ वन सेल्फ। आत्मा जो खो गई है उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए, टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड रिकनेक्ट टू द सोल, पहला। दूसरा गमन ट्रैवल है अपने पास्ट का और अपने भविष्य का। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन सब कुछ नीचे, रेड लाइट, साक्षी होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर एक यात्रा करनी है अपने जीवन की, बचपन से लेकर अब तक की और भविष्य की भी। यह गमन, रेड लाइट, मन शांत, वायुमंडल में संपूर्ण स्थिरता, एक विशाल पर्दा आंखों के सामने, आज मुझे यात्रा करनी है, देख रहा हूं अपने बचपन को, उस घर को, माता पिता को, वो स्कूल, वो बचपन के दिन, वो मित्र, वो कॉलेज का जीवन, क्या उमंगे थी, क्या संकल्प थे, कैसा उत्साह था। देख रहा हूं वर्तमान जीवन को, घर, परिवार के लोग, ऑफिस, साक्षी होकर देखता हूं स्वयं को, कहां से जीवन चालू किया था और अब कहां हूं। जीवन की अनंत यात्रा में खो तो नहीं गया। अब एक नजर भविष्य पर, जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष, यदि ऐसा ही दुख या संताप अभी है तो क्या भविष्य कुछ भिन्न होगा। ऐसी ही भाग दौड़ अब है तो क्या भविष्य स्थिर होगा। कैसा देखना चाहता हूं मैं स्वयं को, अपने भविष्य को। क्या जीवन का वो सुख का संगीत, क्या वो मधुर संगीत हमेशा दूर ही रहेगा? नहीं, अपने संपूर्ण जीवन को आज मैं विहंगम दृष्टि से देख रहा हूं। कहां, क्यों, कब, कौन, कैसे प्रश्न मन में आ रहे हैं। क्या मुझे रुकने की आवश्यकता है या ऐसे ही भागता रहूं? स्टॉप, स्टैच्यू, कोई आवाज आ रही है। स्थिर करो जीवन को। भौतिकता का यह संसार केवल अतृप्ति देने वाला है। मैं स्वयं की आत्मा से, निज स्वरूप से कहीं दूर तो नहीं चला गया। ओम शांति। उसके बाद म अर्थात मनन, म अर्थात मंथन, उसमें फिर से तीन बातें, मौन, साइलेंस, सॉलिट्यूड, एकांत, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखता। सुबह से लेकर रात तक आवाज आवाज आवाज, सुबह से लेकर रात तक बोल बोल बोल, सुबह से लेकर रात तक केवल शोरगुल। शेक्सपियर का एक पात्र मैकबेथ ने कहीं कहा है, लाइफ इज बट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ फ्यूरी एंड साउंड सिग्निफाइंग नथिंग। जीवन है क्या? केवल आवाज, केवल शोरगुल। सुबह से बचपन से लेकर अंत तक व्यक्ति बस बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, सिग्निफाइंग नथिंग। कहां है वो संगीत मौन का? कहां है वो संगीत एकांत का? कहां है वो झलक अंतर्मुक्ता की? क्या उस अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर हम कुछ पल स्वयं को देख सकते हैं, स्वयं से बातें कर सकते हैं, स्वयं का एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ सोल सर्चिंग कर सकते हैं? क्यों ये मौन खो गया है? महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं एक बार जब अफ्रीका में था, एक मठ में गया, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, 6 जून 1914, यंग इंडिया न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था। मैं उस मॉनेस्ट्री में गया और मैंने देखा यहां सभी लोग मौन में हैं। मैंने पूछा ये मौन क्यों है? वहां के मठाध्यक्ष, वहां के हेड ऑफ द मॉनेस्ट्री ने कहा, वी डू नॉट नो व्हाट टू स्पीक, वी आर सच अ फ्रेल क्रिएचर, अनलेस एंड अंटिल वी अंडरस्टैंड व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक, हाउ शुड वी स्पीक। सो दैट्स व्हाई इट इज द डिसिप्लिन इन दिस मॉनेस्ट्री टू मेंटेन इटर्नल साइलेंस। कैन बी एबल टू लिसन द वॉइस ऑफ द कॉन्शियंस in the हसल एंड द बसल ऑफ द वर्ल्ड, क्या वो अंतर मन की अंत चेतना की आवाज इतनी आवाज में संसार की सुनी जा सकती है? नहीं, मौन चाहिए। बिना मौन के आत्मा शांत नहीं हो सकती। पहले मुख का मौन, मौन हो जाना, चुप हो जाना, स्थिर हो जाना, आवाज की दुनिया से परे चले जाना, कुछ पल इतनी व्यस्त दिनचर्या में एकांत में चले जाना और उस एकांत में खुद से बातें करना। दुनिया से बहुत बातें कर ली, दूसरों ने हमसे बहुत बातें कर ली, हमसे अपने अपने आप से हमने कितनी बातें की, सेल्फ टॉक, दैट इज द मिसिंग डायमेंशन ऑफ लाइफ। जब ऐसा मौन हम अपने लिए कुछ समय, वेयर देयर इज अ डिजिटल साइलेंस, वेयर देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस, आज का युग आवाज का है, इलेक्ट्रॉनिक आवाज, सोशल मीडिया का है, सुबह से लेकर रात तक। आज हम सुबह पढ़ रहे थे, एक वेबसाइट कंपनी के मालिक ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने लिखा, डोंट थिंक दैट यू विल गेट रिच इफ यू कीप ऑन चेकिंग यूर ईमेल सो ऑफन। अमेरिका ने स्टैटिस्टिक्स निकाला था कि एक कॉरपोरेट व्यक्ति, एक बिजनेसमैन एक घंटे में 36 टाइम्स ईमेल चेक करता है, एक व्यक्ति 118 मिनट्स 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। सारी एनर्जी बाहर जा रही है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। जब तक वो मौन नहीं, उसी मौन में आत्मा का, सुख का, खुशी का, हैप्पीनेस का संगीत, मधुर संगीत, वो सरगम सुनाई देगी। तो हरेक ने जब यहां आए हैं, यहां से संकल्प करके जाना है कि व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय निकालना है जहां हम मौन रहेंगे। महात्मा गांधी हर मंडे साइलेंस में रहते थे, एवरी मंडे साइलेंस। Can we take out 10 minutes, 20 minutes, half an hour where we are absolutely alone and none is around us in the deep cave of solitude, listening the sibilance of night, listening the sound within, listening the sounds of nature, prakriti ki jo awaze hai, prakriti kuch keh rahi hai, the divine call has come now, listen, clutch my hand and come, aa jao। मौन कह रहा है, मौन पुकार रहा है, एकांत पुकार रहा है, अंतर्मुक्ता की वह गुफा पुकार रही है, अंदर चले जाओ। ए आर रहमान ने लिखा है एक जगह कि जब मुझे नया संगीत बनाना होता है तो मैं सब तरफ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, फिर मुझे ये सोच नहीं चलता है कि ये गीत बनेगा, फिर वो प्रसिद्ध होगा, फिर अवार्ड मिलेगा, ये सब बाधा है। I get disconnect from everything, disconnected, and तब जाके नया संगीत रचता हूं। न्यू संगीत, रचनात्मकता मौन से उत्पन्न होगी। सा रे ग म प, प अर्थात परिवर्तन, तीन चीजों का परिवर्तन, इमोशंस, भावनाएं, एटीट्यूड, हमारी वृत्ति, और तीसरा हैबिट्स। एक लिस्ट हरेक ने बनानी है, व्हाट आर द टाइम वेस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स ऑफ माय लाइफ। मेरे जीवन में टाइम वेस्टर्स कौन कौन से हैं, एनर्जी ड्रेनर्स कौन कौन से हैं? क्या कोई व्यक्ति है, कोई संबंध है, कोई साधन है, क्या है वो, कौन सी चीज है जो ऐसी आदत बन गई है जो मैं बेचैन रहता हूं, बेचैन करे हुए है मुझे, और वो करना ही है। जैसे एक मदारी है जो अपने उसके पास एक बंदर है, वो बंदर को सुबह चार रोटी खिलाता है, शाम को तीन खिलाता है। एक दिन उसने सुबह तीन खिलाई तो बंदर नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया, क्योंकि उसको चार चाहिए थी। परंतु फिर उसने शाम को उसको चार खिलाई, पर शाम को वो तीन खाता था, आज चार खिलाई, बंदर ने फिर भी नहीं खाई। ये बंदर का मन ही मनुष्य का मन जैसा है, या मनुष्य का मन उसके जैसा है, जो उसको आदत पड़ गई। बंदर को उसने समझाया, भाई देखो कुल मिला के तो सात ही हो रही है, पर नहीं, सुबह चार चाहिए, शाम को तीन, वही चाहिए। ऐसे मन को भी कुछ कुछ आदतें बन गई है एंड दोज हैबिट्स आर डेंजरस फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल. आइडेंटिफाई देम एंड डिस्ट्रॉय देम. यहां संकल्प करके जाना है इस स्थान पर कि ये आदत घातक है मेरे लिए. दूसरा है भावनाएं और भाव. किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत हमने मन में भर रखी है. क्या ऐसा घृणा भाव यदि मन में है तो क्या जीवन शांत रह सकता है? जीवन का वो संगीत वो सरगम हम सुन सकते हैं? नहीं. स्थिर करना है मन को, एकाग्र करना है मन को. उसके लिए भावनाओं की शुद्धि होनी चाहिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स इमोशंस. एटीट्यूड, किस दृष्टिकोण से हम दूसरों को देखते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है? जो हम सोचेंगे वही वाइब्रेशंस उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे. मैं यहां जो सोचता हूं मेरे विचार प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति और विचारों की रिएक्शन और घटनाओं का निर्माण. मैं सोचता हूं ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वो विचार प्रकृति में जा रहा है, उसी तरह के विचारों को ढूंढ रहा है और घटनाओं का निर्माण. मैं सोचता हूं मैं बीमार न पड़ जाऊं, मैं बीमार न पड़ जाऊं, मैं बीमार हूं, विचार प्रकृति में और नई बीमारी आ गई. मैं सोचता हूं कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, विचार प्रकृति में गया, सिमिलर विचारों को आकर्षित किया, घटनाओं का निर्माण. जो परिस्थिति में आज हम है, कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं, मैं स्वयं जिम्मेवार हूं. टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यूर सेल्फ एंड देन द चेंज विल ऑकर, देन द ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस. सो लॉन्ग एज यू कीप ऑन ब्लेमिंग समबडी, सो लॉन्ग एज यू कीप ऑन ब्लेमिंग फेट, पीपल, सर्कमस्टांसेस, नो चेंज इज गोइंग टू अकर. मैं जो हूं मैं स्वयं जिम्मेवार हूं और मैं खुद उसको बदलूंगा. एक दूसरा ही ऐसा उद्योगपति आपने सुना होगा, MDH मसाले. महाशय दी हट्टी, वो जो व्यक्ति था धर्मपाल गुलाटी, कैसा संघर्ष किया उसके जीवन में ये बिजनेस जब उसने चालू किया था मसालों का 1919 से. आज भी है शायद उनकी 95 उम्र है, बट दैट हैज बिकम अ ब्रांड. ही वॉज रिजेक्टेड दिल्ली के चांदनी सड़क पर, वो लारी लेके घूमते थे. वहां से शुरुआत है उस बिजनेस की और कहां से कहां पहुंच गया. दैट वॉज बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. तो एटीट्यूड, फीलिंग्स और हैबिट्स. उसके बाद लास्ट नी. नी अर्थात निराशा मुक्त. ध उसके बाद ध. ध अर्थात धारणाएं. तीन धारणाएं हम आपको यहां बता रहे हैं. धारणा अर्थात कोई संकल्प जो हमें करना है, जो हमें अपने जीवन में धारण करना है. सबसे पहला, क्योंकि आप बिजनेस फील्ड से है तो बेस्ट बिजनेसमैन के लिए तीन चीजें कही जाती है, लीडरशिप स्किल्स, टेकिंग इनिशिएटिव और तीसरा रिमेनिंग अनअफ्रेड इन द फेस ऑफ सर्कमस्टांसेस. परिस्थितियां कैसी भी हो डरना नहीं, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना. ढूंढो, सोचो, मनन करो, मंथन करो, पढ़ो दूसरी आत्माओं ने कैसे लीडरशिप, कैसे वो लीडर बने. लीडर इज अ वेरी हाई स्टेज ऑफ द माइंड. जबरदस्ती कोई लीडर नहीं बन सकता. लीडर कमांड्स रिस्पेक्ट. अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज अ वन हु हैज द लीडरशिप क्वालिटीज, हु टेक्स द इनिशिएटिव. जो कोई करने को तैयार नहीं है वो करेगा, मैं करूंगा. ये धारणाएं हैं, तीन धारणाएं. जिस मार्ग पर कोई जाने को तैयार नहीं उस मार्ग पर मैं जाऊंगा, कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा. तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा. तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो. मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी. मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा. तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो. taking initiative. सबने जो छोड़ दिया वो हम करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प मन में. और ये जो भूमि है जहां आप अब बैठे हैं, यहां अगर कोई संकल्प लेकर जाए तो वो संकल्प पूर्ण होगा, क्योंकि ये तीर्थों का तीर्थ और महातीर्थ है. यहां किया हुआ संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता. बट प्लान लेटर ऑन, ट्राई टू इंप्लीमेंट इट लेटर ऑन. Think, churn, cogitate, reflect, go in silence, go in solitude, and in the silence, a new plan, a new idea, a new brainchild will arise that will revolutionize the world. Last, ni. Ni arthat, nirasha, mukt, usme phir teen baate. Sabse pehli. बीती सो बीती. अब तक जो हुआ जीवन में, हो सकता है बहुत खराब हुआ, नहीं होना चाहिए था, बहुत नुकसान हो गया, नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसी बातें हुई जीवन में, नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे लोग जीवन में आए, इतना धोखा मिला, धोखाधड़ी हुई, किसी ने हर्ट किया, किसी ने ब्लेम किया, किसी ने बहुत आहत किया हृदय को. क्या पकड़ के रहोगे उस वुंड को, उस हर्ट को, उस जख्म को? जितना जोर से पकड़ोगे वो भरेगी नहीं कभी. यदि निराशा से मुक्त होना है, यदि जीवन में निराशा की एक किरण भी है, तो जरूर कुछ कोई ना कोई बात को पकड़ के रखा है. किसी ने हमसे बुरा व्यवहार किया, गलत शब्द कहे, अपमान किया, आलोचना की, निंदा की, सोशल मीडिया में अब्यूज किया, तो क्या दुखी हो जाए? नहीं. जो बीत गया सो बीत गया. कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता जो वो ठीक कर दे या वापस ला दे. हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं जरूर. जो बीत गया उससे हम सीख ले और आगे बढ़े, उससे सबक ले और आगे बढ़े. दुखी होते नहीं रहे, उसका वो बोझ उठाते नहीं चले जीवन भर. जीवन बोझिल हो जाएगा, दुखी रहेगा. हो गया वो हो गया, खेल था एक, स्वप्न था एक, मायामयी संसार, उसमें एक पार्ट था, एक ड्रामा था. वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स, शेक्सपियर कहता है. वो एक पार्ट था, वो एक सीन था, वो एक साइड सीन था, आया और गया. अब उसका कोई मतलब नहीं है. अब मुझे उससे सीखना है और आगे बढ़ना है. फंस के दुखी होकर एक जगह अटक नहीं जाना है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते, वाई मी. अंग्रेजी में एक किताब है, वाई मी. लेखक ने विवेचन किया है, ये वाई मी क्या है, क्यों ऐसा सोचते हम, बाकी सबको अच्छा मिल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात है, बीती सो बीती, द पास्ट इज पास्ट, सीख लो और आगे बढ़ो. दूसरा है फॉरगिव, माफ कर दो उन सबको जिन्होंने शायद हमारे साथ अच्छा नहीं किया, परंतु उनके प्रति घृणा रखकर, उनके प्रति नफरत रखकर, उनके प्रति वो ग्रज, इफ आई एंटरटेन, व्हाट इज माय लाइफ, आई नो दैट दे हैव डन द रॉन्ग थिंग्स, पर जो हुआ वो मेरे ही कार्मिक अकाउंट था जो क्लियर हुआ उनके साथ. एक व्यक्ति था अंधा, जन्मांध, बॉर्न ब्लाइंड, हिप्नोटिक रिग्रेशन करके पता करा गया है कि वो पहले जन्म में क्या था. पता चला किसी तीसरे चौथे पहले जन्म में वो एक जल्लाद था जो कि लोगों की आंखें फोड़ता था, वो उसका काम था, परंतु वो पाप नहीं था आंखें फोड़ना, उसे आंखें फोड़ने में बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था. उसका ये परिणाम था. जो हमारे साथ हो रहा है हमारा ही किया धरा है, हमारा ही जन्म जन्म के हिसाब किताब यहां चुप्त हो रहे हैं. इसके लिए आई कैनॉट ब्लेम अदर्स. जीजस ने कहा था सूली पर, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग. एक अमेरिकन सर्जन महिला ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि एक व्यक्ति ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, बाद में वो सर्जन बनी, विख्यात हुई, और एक रात एक मरीज जिसको गोली लगी थी वो आया और उसने देखा ये तो वही व्यक्ति है.
And she was the only surgeon, whether to operate or not to operate. If she doesn't operate, the patient is going to die. But he was the same accused. The same person who had committed the sensual assault. Kya karu? Church gayi. Uske saamne ek drishya ubhra. Usne dekha, wo Jesus Christ nahi hai, main wahan hoon. Just as I have forgiven them who have trespassed me, you forgive them who have trespassed you. Nahi to tere hriday mein ye baat reh jayegi, ye tis. And she operated that person. Ye dusra kaam, shama kar do. Aur teesra, shama mangni hai. Kisse mangenge shama? Aap batayenge. Kisse maafi mangenge? किससे माफी मांगेंगे? जिनको हमने सताया. सताया है हमने किसी को कि नहीं? जिनका हमने अपमान किया. न्यू अकाउंट हमने बनाया है, कार्मिक अकाउंट. तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, डायरी, पेन, पेंसिल, सब कुछ नीचे. संपूर्ण स्थिर शरीर जिस मुद्रा में है उसी मुद्रा में रहेगा, बार बार हिलना डुलना नहीं है. और संपूर्ण एकाग्रता के साथ अभी हम एक योग का प्रयोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने हमें बहुत सताया, हमें बहुत दुख दिया, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था, और उनके प्रति हमारे मन में नफरत है, बदले का भाव है, घृणा है. इनको क्या करेंगे हम? अनकंडीशनल पार्डन. उनके लिए नहीं, अपने लिए. उनके लिए नहीं, अपने लिए. क्योंकि ये बोझ है मुझ पर, और जब तक ये बोझ है, मैं वो संगीत, वो सारे गम प ध नी नहीं सुन पा रहा हूं, खुशी का, हैप्पीनेस का. दूसरा काम करना है, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिनको हमने सताया है, ऐसे ऐसे शब्द हमने बोल दिए कि जिसके वजह से उनको हर्ट हुए, आहत हुए, उनका जीवन नर्क हमारी वजह से बना हुआ है. ऐसी आत्माओं से क्या करेंगे? क्या करेंगे? माफी मांगेंगे. और ये काम केवल आज नहीं, आज से चालू करना है, अगले 6 मास. एक समय आएगा, एकदम हल्कापन आ जाएगा, माफी हो गई. क्योंकि जब तक किसी एक आत्मा की बद्दुआ हमारे साथ चल रही है, एक आत्मा की, एक व्यक्ति की, हम आगे नहीं बढ़ सकते. दुख रहेगा जीवन में, उदासी रहेगी, निराशा रहेगी, कैसा नैराश्य पता नहीं, पर खाली खाली रहेगा, रिक्तता रहेगी. तो सभी स्थिर होके बैठेंगे. देह के भव्य भाल पर विराजमान चेतना की वह दिव्य सरगम मैं हूं. वायुमंडल अव्यक्त गहन मौन अंतर्मुक्ता की गुफा परम एकांत कोई आवाज नहीं शरीर स्थिर से बातें करेंगे
कौन हूं मैं, क्या कर रहा हूं, क्या वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। आवाज की इस दुनिया में कहां खो गया हूं, मौन पुकार रहा है, भागती दौड़ती जिंदगी ये संसार के प्रपंच, ये संसार के संबंध कहीं बंधन तो नहीं बन गए। धन्यवाद उस परम पिता का, आत्माओं के उस पिता का, शिव बाबा का, जो मुझे यहां आने का अवसर मिला, रुकने का अवसर मिला, खुद से बात करने का, खुद को देखने का, सबसे न्यारा कंप्लीटली डिटैच्ड आज मैं स्वयं को देख रहा हूं, केवल स्वयं को। बहुत बोल लिया, अब आवाज से परे जाना है। बहुत भागा, अब रुकना है। बहुत भटका, अब स्थिर होना है। बहुत रोया, अब इन आंसुओं को पोंछना है। बहुत विस्तार किया, अब संकीर्ण करना है। मैं एक तेजोमयी आत्मा हूं, शरीर के भान से परे, व्यक्त संसार से परे, मैं एक चैतन्य मणि हूं। भ्रुकुटी तख्त पर चमकता हुआ हीरा हूं। गहन शांति का अनुभव, आहा कैसा दिव्य लौकिक अनुभव हो रहा है। ऐसा पवित्र वातावरण है, ये कौन सी तरंगे है वायुमंडल में, ये क्या है, कहां हूं मैं, मैं आत्मा धन्यवाद से भर गया हूं, मैं आत्मा आशा की किरण से भर गया हूं, प्रेम की किरण से भर गया हूं, सकारात्मकता की किरण अंतर्गमन, अतीत को देख पा रहा हूं, भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मौन एकांत अंतर्मुक्ता गहन मनन हो रहा है, इसी मौन में और इसी एकांत में एक नवजीवन की शुरुआत। सभी आत्माओं को मैं माफ करता हूं और उन दूसरी आत्माओं को जिनको मैंने दुख दिया उनसे माफी भी मांगता हूं, और अब एक नव शुरुआत, नवीन जीवन की शुरुआत आज से हमारे बीच हम सब की आदरणीय महातेजस्विनी महातपस्विनी दादी का आगमन हो रहा है। धन्य है हम सभी आत्माएं जो आज की इस सभा में हम उनसे मिलेंगे। ये मुझ आत्मा का कितना भाग्य है जो ऐसी महान आत्माओं का आज दर्शन होगा। इसी संकल्प से सभी फिर से देह की चेतना में आएंगे। ओम शांति।